તારીખ 20/3/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 194 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું આગ્રામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 6.
તમે અપને અનુભવ કી એક મહત્વપૂર્ણ બાત શ્રીમદજી લિખતે હૈ जीव को मार्ग मिला नहीं है, इसका क्या कारण? अनंत काल में परिभ्रमण कर रहा है जीव, इस जीव को मार्ग नहीं मिला, इसका क्या कारण? धार्मिक क्षेत्र में सभी प्रकार की धार्मिक क्रिया की है, अपने शास्त्रों में भी आता है कि गृहलिंगी होकर के पंच महाव्रत आदि 28 मूल उनका निरतिचार पालन किया है, फिर भी जीव को मार्ग नहीं मिला है, इसका क्या कारण? बाह्य चारित्र के हिसाब से दिशा धारण की है और ज्ञान के हिसाब से दिखे तो 11 प्रवर्तक शास्त्र ज्ञान भी किया है, शास्त्र ज्ञान में जो शास्त्र की धारणा है बराबर शास्त्र कहता है ऐसी धारणा की है, इतना ज्ञान इतना चारित्र बाह्य में, दोनों बाह्य ज्ञान है, ज्ञान भी बाह्य ज्ञान है, आचरण भी बाह्य आचरण है, फिर भी मार्ग नहीं मिला है, इसका क्या कारण? यह दोनों बात हम अनंत बार कर चुके हैं, फिर भी मार्ग नहीं मिला है, इसका क्या कारण? इसका प्रश्न उठाया है, प्रश्न उठा करके जिसको पत्र लिखा है उसको इस प्रश्न पर इसका बारंबार विचार करें, क्या लिखा है इस प्रश्न का बार बार विचार करें कि जीव को मार्ग क्यों नहीं मिला, इसका बारंबार विचार कर योग्य लगे तब शास्त्र साक्षात का पत्र पढ़े। एक पर्ची में उतना लिखा है, साथ में एक पत्र लिख करके भेजा है कि साथ वाला पत्र पढ़ लेना। अभी विशेष लिखने के या बतलाने की दशा नहीं है, तो भी एकमात्र आपकी मनोवृत्ति कुछ दुखित होने से उनके इसलिए यथा अवसर जो कुछ योग्य लगा सो लिखा है। क्या लिखते हैं कि ज्यादा लिखने की हमारी दशा नहीं है, पत्र धार्मिक पत्र पर भी लिखने की हमारी इतनी दशा नहीं है कि हम लंबे चौड़े पत्र लिखा करें, फिर भी जिस पर पत्र लिखा है उसको ज्यादा दुख है, इसको दुख रुकने के लिए जो भी योग्य लिखा तो लिखा गया है, हमें लगता है कि मार्ग तो सरल है, क्या इस आत्मकल्याण के प्राप्ति का मार्ग अनंत काल से नहीं मिला है, फिर भी मार्ग इतना कठिन नहीं है, सरल है तो भी नहीं मिला है। ठीक मार्ग सरल है तो भी नहीं मिला है, क्यों? कि इस प्राप्ति का योग मिलना दुर्लभ है। मार्ग सरल है लेकिन मार्ग प्राप्त हो गए ऐसा मार्ग को जानने वाले का योग मिलना दुर्लभ है। योग मिलने से मार्ग इतना दुर्लभ नहीं है। विशेष बात कहते हैं जी। इतना एक प्रचालक लिखा है सिर्फ। अब वो बात कहते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, अनंत काल से जीव को मार्ग क्यों नहीं मिला, इस विषय का समाधान देने के लिए एक पत्र वो दिन लिखते हैं। पत्र का मथाला है, मथाला मैंने ऊपर एक सूत्र जैसा लिखते हैं जी। सत्स्वरूप को और भेदभाव से और अनन्य भक्ति से नमो नमः। सत्स्वरूप मैंने अपने आत्मा, अपने आत्मा में भेद क्या रखना, खुद ही तो अपना आत्मा है सत्स्वरूप, खुद है तो इसमें कोई अंतर नहीं है। तो अभेद भाव से मैं ही हूं सत्स्वरूप, ऐसे अपने स्वरूप को अभेद भाव से और अनन्य भक्ति से बहुमान से नमस्कार किया है, स्वयं को ही नमस्कार किया है जी। किस तरह से नमस्कार किया है? अभेद भाव से नमस्कार किया है। अभेद भाव मैंने, मैं और मेरा आत्मा एक दो बात नहीं रहती है, तन्मय होकर के लीन होकर के जो परिणाम हुए वो अभेद भाव रूप है, उसको भाव नमस्कार भी कहने में आता है।
नमस्कार तो दूर होगा नमस्कार तो दूर होगा, एक में नमस्कार कैसे होगा?
हाँ, ये एक में नमस्कार होता है, दो में नमस्कार होते हैं वो तो हम जानते हैं, लेकिन ये एक का नमस्कार है। नमस्कार करने योग्य भी और नमस्कार होने योग्य भी खुद ही है, दो नहीं है इसमें, एक परिणाम है और एक द्रव्य है, फिर भी इतना भेद भी इसमें नहीं है, इतना भी भेद नहीं। अब कहते हैं कि जो निरंतर भाव अप्रतिबद्धता से विचरते हैं ऐसे ज्ञानी पुरुष के चरणारविंद के प्रति अचल प्रेम हुए बिना और सम्यक प्रतीति आए बिना सत्स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। क्या कहा? कि जो सत्पुरुष भाव अप्रतिबद्धता से विचरते हैं, जिसको भाव में कोई प्रतिबद्धता नहीं, क्या मतलब है इसका? कि जो ज्ञानी होते हैं उसके भाव कहीं प्रतिबद्धता को प्राप्त नहीं होते हैं, कि अपने स्वरूप को भूल करके अन्य द्रव्य भाव में एकत्व हो जाना, ऐसे भाव को प्रतिबद्ध भाव कहने में आता है। ऐसा जिसको नहीं होता है उसको अप्रतिबद्ध कहने में आता है। ऐसे जो सत्पुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, उसके शरणानंद के प्रति अचल प्रेम हुए बिना, इसके प्रति बहुमान से, भक्ति से अचल प्रेम हुए बिना मैंने किसी अवस्था में विचलित हो जाए ऐसा प्रेम नहीं। प्रतिकूलता आ जाए तो भूल जाए, रोग हो जाए तो भूल जाए, पीड़ा हो जाए तो रोग की पीड़ा हो जाने से भी भूल जाए, या तो ज्ञानी पुरुष के बाह्याचरण होने से शंका हो जाए, वहां तक अचल प्रेम नहीं, वो विचलित हो गया। शास्त्र को तो बराबर समझाते हैं ऐसा क्यों, क्या ऐसा क्यों, कोई ना कोई बाह्य प्रवृत्ति से जो विचलितता जाती है वहां अचल प्रेम नहीं है, अचल भक्ति नहीं है। उसके प्रति अचल प्रेम हुए बिना उस प्रेम का लक्षण क्या है? प्रेम का लक्षण है चाह। चाह क्या चाहती है? कि चाह अस्तित्व को चाहती है। क्या हमें ये होना, इससे हमें दूर नहीं रहेंगे। क्या होता है, हमें जो चाहिए वो चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, और हमें इससे दूर रहना भी नहीं है। इस तरह से ज्ञानी पुरुष के प्रति असल प्रेम होता है और उसकी सम्यक प्रतीति होती है, पहचान होती है। कैसी पहचान होती है? कि जैसे तीर्थंकर आदि सर्वज्ञ पुरुष तीर्ने के निमित्त होते हैं, वैसे ही वर्तमान काल में ज्ञानी तीर्ने के निमित्त होते हैं। सर्वज्ञ का जमाना पूरा हो गया, आज 2500 साल हो गए। अब कोई सत्पुरुष मुनि के रूप में हो या ज्ञानी के रूप में हो, उसमें इतना निमित्तत्व है कि दूसरा जीव को तिरने में निमित्त हो सके। तो तिरने में जो निमित्त होता है ऐसा उसको पहचाना तो तिर जाएगा, जिसको पहचान हुई वो तिर जाएगा, वो खुद तिर जाएगा, पूरे संसार को तिर जाएगा, ऐसी प्रतीति आ जाए, विश्वास आ जाए, तो डिगेगा नहीं कभी। जहां तक विश्वास नहीं आया वहां तक सब गड़बड़ है। सत्स्वरूप की प्राप्ति मैंने आत्मस्वरूप का अनुभव, इस प्रकार के परिणाम में आए बिना किसी को होता नहीं। क्या आत्मा की भी पहचान नहीं होगी और आत्मा का अनुभव भी नहीं होगा? क्यों? कि सत्पुरुष है उसको तो आत्मा प्रकट हुआ है, जो जलते हुए प्रकट ज्योति को नहीं देखता, वो दीवा सलाई और चकमक की अग्नि में जो दिया है वो कैसे देखेगा? जिसकी नजर प्रकट दिया को भी नहीं देख सकते, उसकी नजर अप्रकट दिया को कैसे देखेगी? शास्त्र है वो दिए का चित्र है। क्या शास्त्र है वो दिया का चित्र है। इसमें ज्योति ऐसी होती है, जो ज्योति ऐसी होती है, ऐसा चित्र खींचा है, लेकिन इससे लाइट नहीं पड़ती, कलर बराबर पूरा है उसमें। दिए का जो कलर होता है उस ठीक बराबर ऐसा ही कलर है, फिर भी वो कलर प्रकाश नहीं डालता है। डालता है क्या? कागज पर जो दिया है, कागज का दिया प्रकाश नहीं पालता, दे सकता है क्या? और पूरे अंधेरे में छोटा सा दिया हो वो प्रकाश पाड़ेगा। हमें मार्ग देखना है तो हमें दिया चाहिए। सर्वज्ञ भगवान तो बहुत बड़ी लाइट है, मुनिराज भी बड़ी लाइट है, लेकिन सत्पुरुष है छोटी लाइट है। लेकिन मार्ग देखने के लिए तो लाइट चाहिए। उसमें कागज पर पेंटिंग किया हुआ दिया, इससे मार्ग का प्रकाश नहीं होता है। तो आत्मस्वरूप की प्राप्ति, सब स्वरूप की प्राप्ति कहो या आत्मस्वरूप की प्राप्ति कहो, दोनों एक बात है। आत्मस्वरूप की जो प्राप्ति है वो सत्स्वरूप के, सत्पुरुष के प्रति, ज्ञानी पुरुष के प्रति अचल प्रेम और सम्यक प्रतीति आए बिना किसी को नहीं होती है। ऐसा आने पर, अचल प्रेम और सम्यक प्रतीति आने पर अवश्य क्या कदाचित होगा, कदाचित नहीं होगा, ऐसे नहीं, गारंटी देते हैं। अवश्य वह मुमुक्षु जिसको ऐसी प्रतीति आई, अवश्य वह मुमुक्षु जिसके शरणारविंद की उसने सेवा की है, उसकी दशा को पाता है। मैंने जिस ज्ञानी से सेवा की है उस ज्ञानी की दशा को वो अवश्य प्राप्त करेगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो ज्ञानी बन जाएगा तो उसका निर्माण हो ही जाएगा, उसका मोक्ष हो ही जाएगा, उसका मोक्ष हुए बिना रहेगा नहीं, ये कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए मार्ग को कितना सरल किया, कितना सरल किया मार्ग को, कि एक सत्पुरुष की सम्यक प्रतीति आए और उसके प्रति अचल प्रेम आए तो मोक्ष का रिजर्वेशन हो गया। उसको मोक्ष नहीं मिलेगा वो बात नहीं रही। कितना सरल कर दिया मार्ग को,
बिना सत्पुरुष के नहीं मिल सकता क्या मोक्ष?
नहीं, क्यों? कि हमारी आत्मा है वो चकमक के पत्थर में रही हुई अग्नि है, जबकि सत्पुरुष को तो प्रकट दिया है, वो तो प्रकट तो दिखता दिखता नहीं है, अब प्रकट कैसे दिखेगा ये सवाल है। इस मार्ग का श्रवण किया है जो भी ज्ञानी हुए वो पहले मुमुक्षु थे, अनादेश कोई ज्ञानी होता नहीं, वे पहले मुमुक्षु थे और उन्होंने क्या किया कि ज्ञानी को पकड़ा। सभी ज्ञानियों ने ऐसा ही किया है, वो खुद ही ज्ञानी है। क्या श्रीमद जी खुद ज्ञानी है? वो अपने अनुभव से कहते हैं कि मैंने ऐसा किया था, ऐसा नहीं, सभी ज्ञानियों ने ऐसा ही किया है। सभी ज्ञानियों ने सर्वज्ञान में इस मार्ग का सेवन किया है, इस प्रकार से सेवन अभी करते भी हैं तो ज्ञानी होते हैं, इस तरह से ही होते हैं और भावी में होने वाले इसी मार्ग का सेवन करेंगे। वो जो काम होता है वो एक ही पद्धति से होता है, कार्य पद्धति कहीं दो नहीं होती, एक ही पद्धति से कार्य होता है, दो पद्धति से कार्य होता ही नहीं कभी। ज्ञान प्राप्ति किससे हमें हुई थी हमने डिक्लेयर कर दिया इस बात को, पहले सर्वज्ञानियों का ऐसा हुआ ऐसा कहा, सर्वज्ञानियों को ऐसा हुआ है हो रहा है और होंगे, अब कहते हैं कि हमको भी ऐसा ही हुआ था, लिखने वाले को जाति स्मरण ज्ञान था, इस भूमि कोई ज्ञानी नहीं मिले, लेकिन जब ज्ञानी मिले तो उसको सम्यक प्रतीति आई थी और मार्ग मिल गया था, फिर दूसरे भूमि में कोई दूसरी आपत्ति नहीं खड़ी हुई, स्वतः ही मार्ग मिल गया। तो उनको भी ऐसा ही था, उनको भी ऐसा ही था, उनको तो महाविद्य में मिला, महाविद्य से संस्कार लेके आए वो, महाविद्य में से संस्कार लेके आया, तो यहां बिना गुरु भी ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ऐसे वो भी संस्कार लेके आए थे। तो जो संस्कार लेके आते हैं उनको तो मार्ग मिल जाता है, लेकिन हमें तो अनेक बार ग्रंथ पढ़े मार्ग नहीं मिला, ये सबूत है कि संस्कार लेके नहीं आए हैं, अगर संस्कार लेके आए होते तो मार्ग मिल जाता। तो संस्कार वालों की बात हमें हमको हमारे लिए लागू नहीं पड़ती है, वो बात हमारे लिए लागू नहीं पड़ती है, प्राप्ति इससे हमें हुई थी, वर्तमान में इसी मार्ग से होती है। अब किसी को वर्तमान में ज्ञान प्राप्ति होती है तो इसी मार्ग से होती है, दूसरे मार्ग से नहीं होती है।
जिसे ज्ञान प्राप्ति करनी हो सबको खोजना ही पड़ेगा।
हाँ, सत्पुरुष को नहीं खोजेंगे और हमें स्वाध्याय करके ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी ऐसा नहीं होगा, क्या ऐसा होगा ही नहीं, ये वस्तु स्थिति है।
खोजने के लिए तो देशांतर करना पड़ेगा
जी,
खोजने के लिए तो देशांतर करना पड़ेगा,
कुछ भी करना पड़ेगा, पानी नहीं मिलता है, आगरा में पानी नहीं है, जमुना सूख गई हो मान लो तो फिर क्या करेंगे, कि जहां पानी मिलता हो वहां देने को जाना पड़ेगा, पता चला कि मथुरा में मिलता है पर आगरा में नहीं मिलता है तो जाना कि नहीं जाना मथुरा। अरे जहां भी मिलता हो वहां जाने के लिए हम तैयार हैं, ये होता है कि नहीं होता है, कोई आदमी उतना बीमार हो जाता है, उतना बीमार हो जाता है कि इसकी बचने के लिए कोई दवाई चाहिए, तो हमारा अभिप्राय क्या होता है कि दुनिया में कहीं से दवा ला करके बचाना है उसको, क्या कहीं जहां मिलती हो वहां हमें पता चला कि हमको 5-10 हजार मील जाना पड़ेगा, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। एक मरण से बचने के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, और अनंत जन्म मरण से बचने के लिए हमें शर्त करनी है, कंडीशन रखनी है हमारे, कि अगर हमें अनुकूलता होगी तो हम काम करेंगे, अनुकूलता नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे। इसका मतलब वो है कि हमें हमारी नियत ठीक नहीं है। और जिसको अपने आत्म कल्याण में नियत ठीक नहीं है तो फिर वो कितना प्रमाणिक है समझ लेना, तो प्रमाणिक मिल नहीं सकता। परमचंद जी बात ऐसी है, थोड़ी विचार में पड़ जाने ऐसी बात है। एक ऐसी विचित्र बात है कि हम हमारे आत्मकल्याण में भी सही नियत से नहीं चलते हैं, हमारी शर्त रहती है ऐसा हो तो हम ऐसा करें, ऐसा हो तो हम ऐसा करें, ये तो कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी शर्त तो हमेशा हमेशा चालू रहेगी और कभी ये काम होने वाला है ही नहीं। वर्तमान में इसी मार्ग से होती है और अनागत काल में भी ज्ञान प्राप्ति का यही मार्ग है। भविष्य में हम कर लेंगे, दूसरे जन्म में कर लेंगे, इस जन्म में नहीं किया तो आगे जाकर के कर लेंगे, दूसरे मार्ग से मिलने वाली नहीं। आज करें और लाख करोड़ वर्ष या भव के बाद करें, इन मार्ग में आना पड़ेगा। अब तो हम ठीक है कर लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन गुरुदेव जो थे तो वो गुरुदेव को पहचाने थे क्या? हाँ पहचाने नहीं तो मिले वो कहां से कहा? ऐसे तो अनंत बार हम समूह शरण में भी दीन है, गुरुदेव क्या सर्वज्ञ देव मिले हैं, हमें मिले हैं लेकिन नहीं मिले के बराबर मिले हैं। सर्वज्ञ को भी कोई प्रगट कारण को पाकर के या कोई परोक्ष कारण को पाकर के सम्यक रूप में पहचाना नहीं है, तो फिर सर्वज्ञ के रूप में तो पहचानेंगे भी कहां से? इसके सम्यक्त्व को भी नहीं पहचाना है तो सर्वज्ञ को तो सर्वज्ञपणा को तो कहां से पहचानेंगे? ये तो बन सकता नहीं है।
यानी गुरुदेव मिले ही नहीं।
हाँ वास्तव में पहचाना नहीं तो मिले ही नहीं है। काल में भी ज्ञान प्राप्ति का वही मार्ग है, सर्व शास्त्रों का बोध लक्ष्य देखा जाए तो यही है। हम कहते हैं उतनी बात नहीं है, सभी शास्त्र में वो बात है, सभी शास्त्र का कहने का इरादा बोध, जो भी शास्त्र में बोध भरा है उसका इरादा इसी जगह पे है, ऐसा कहते हैं। बोध में विधिविधता है लेकिन इरादा एक है। जैसे हमें 10 दुकान है, 10 में अलग अलग व्यापार है, लेकिन इरादा क्या है 10 में? पैसा कमाना एक, धंधा की तरकीब 10 प्रकार के क्या, लेकिन इरादा एक ही प्रकार का। वैसे शास्त्र में बोध एक प्रकार का, इसमें इरादा एक ही है। क्या है? एक ही इरादा है कि बिना सत्पुरुष मिले, पहचान हुए, अचल प्रेम हुए, बिना ज्ञान प्राप्ति होनी ही नहीं। तो हमें देख लेना है कि परिस्थिति हमारी हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई, ज्ञान प्राप्ति होने वाली नहीं है। का बोधवश देखा जाए तो वही है, और जो कोई भी प्राणी इस संसार चक्कर से छूटना चाहता है उसे अखंड वृत्ति से इसी मार्ग का आराधन करना चाहिए। अखंड वृत्ति से माने क्या, कि बात अचल प्रेम वाली या सही प्रकृति वाली नहीं रही। वो जो कोई प्राणी छूटना चाहता है, वास्तव में छूटना चाहता है, खराब दिन से हो, नियति कोई फर्क न हो, तो उसे ठीक है, वृत्ति खंड हो ऐसा भी नहीं, पृथक हो जाए ऐसा भी नहीं, अखंड वृत्ति से यही मनुष्य मार्ग का आराधन करना चाहिए। इस मार्ग का आराधन किए बिना जीवन में अनादि काल से परिभ्रमण किया है, अब क्या क्या पहला प्रश्न था ना, जीव को मार्ग मिला नहीं, इसका क्या कारण, ये प्रश्न उठाया। जीव को अनंत काल में मार्ग नहीं मिला, इसका क्या कारण, क्योंकि इसका कारण यह है कि इसने अखंड वृत्ति से इस मार्ग का आरंभ नहीं किया है, और यही अनाधिकार से परिभ्रमण का कारण हुआ है। जब तक जीव को स्वच्छंद रूपी अंधत्व है, तब तक इस मार्ग का दर्शन नहीं होगा। तो ये बात बहुत बढ़िया किया है। क्या कहते हैं कि ज्ञानी को पहचाने बिना और उसके कहे हुए मार्ग पर चलने का आज्ञारूप परिणाम हुए बिना, उसके आज्ञा में चलना में ऐसे परिणाम हुए बिना जीव अपनी मनमानी करने लगता है, उसी का नाम स्वच्छंद है। मन कैसे करता है, जीव जिसको ज्ञान का शोषण है विवेक शास्त्र पढ़ने लगता है, जिसका शरीर का स्वास्थ्य अच्छा है, शरीर बल जिसको कहते हैं तन बल, वो क्रियाकांड में आ जाता है। जिसको धन बल है वो दयादान करने में लग जाता है, जिसको वचन बल है तो भाषण देने लग जाता है। तन बल, धन बल, वचन बल क्या, और जिसको शोषण का बल है वह शास्त्र पढ़ता है। ये सब क्या है, स्वच्छंद है। ये सब क्या है, स्वच्छंद है। कैसे कहते हैं कि धार्मिक क्रिया नहीं है क्या, इसे धार्मिक क्रिया कहनी जाती नहीं है।
शास्त्र स्वाध्याय को तो परम तप लिखा है, तब से रविदास जी
शास्त्र स्वाध्याय को परम तप क्या है? जो ज्ञानी की आज्ञा में रहकर शास्त्र स्वाध्याय करता है उनको, ज्ञानी
तो क्या करे,
ज्ञानी को खूब पानी नहीं मिले तो क्या करे, दवाई नहीं मिले तो क्या करे, दवाई नहीं मिलती है चलो मर जाएंगे हम तो, क्योंकि हमको दवाई नहीं मिल रही है तो पानी नहीं मिल रहा, हम तो चलो मर जाए, पानी नहीं मिलता है ऐसा कोई करता है क्या? जैसे कैसे बोलने चाहिए, अगर जिंदा रहना हो तो किसी भी कीमत पे हमें मरना नहीं है। क्या अभिप्राय क्या आता है, कि किसी भी कीमत पे हमें नहीं मरना है। एक बार भी जिसको किसी भी कीमत पे नहीं मरना है उसको अनंत बार मरने के परिणाम में ये भाव क्या नहीं आता है? अनंत बार नहीं मरने के लिए ऐसे परिणाम क्यों नहीं आता है? हमें इसका जवाब चाहिए। क्या देखो तो आप प्रश्न पूछना, शाम को हम पूछेंगे, ठीक? ऐसा क्यों, जवाब दीजिए। एक बार मरने के लिए कोई तैयार नहीं है, किसी को तैयार तो भले ही मर जाए, कोई तैयार नहीं है। और अनंत बार मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, कैसी विचित्र बात है, ये विचित्रता भी अनंत में जी के थोड़ी नहीं है, अनंत विचित्रता लेकर के परिणमता है। देखो इधर कि जो ज्ञानी के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलने का परिणाम करते हैं और अपने मनमाने अभिप्राय से कुछ भी करने लग जाता है, उसको सुसंद रूपी अंधत्व प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? सुसंद रूपी अंधत्व प्राप्त हुआ है और इस अंधेरे में उसको मार्ग का दर्शन नहीं होता है। क्या कि जो क्रिया करता है वो सुसंग से करता है, उसमें अंधत्व है, इसलिए मार्ग का दर्शन नहीं होता है। जब तक जीव को सुसंग रूपी अंधत्व है तब तक इस मार्ग का दर्शन नहीं होता। इस अंधत्व दूर करने के लिए क्या करना, इस अंधत्व दूर करने के लिए जीव को इस मार्ग का विचार करना चाहिए, यानी दृढ़ मोक्षेच्छा करनी चाहिए। तब विचार में अप्रमत, इस विचार में अप्रमत रहना चाहिए तो मार्ग की प्राप्ति होकर अंधत्व दूर होता है। यो निशंक माने, देखो क्या कहते हैं, दृढ़ मोक्षेच्छा करने क्या आया, पूर्णता का लक्ष्य करना, ये गुरुदेव का वचन है। और दृढ़ मोक्षेच्छा करनी ये श्रीमद् जी का वचन है। क्या बात है, अनंत ज्ञानियों का एक ही अभिप्राय होता है, एक ही मत होता है, शब्द अलग अलग हो सकता है, ये वाचक है, शब्द में से वाचक है और इसका जो वाच्य है वो कहीं नहीं बदलता है, शब्द बदलता है वाच्य नहीं बदलता है, इसका विषय एक ही होता है। मैं तो बहुत बहुत व्यवस्थित बात किया है कि इस
अंधत्व दूर होने के लिए जीव को इस मार्ग का विचार करना, जीव को इस मार्ग का विचार करना माने के मार्ग कैसे मिले इसका विचार करना, और इसके लिए सबसे पहले दूर मुख से इच्छा करना। जिसको अपना पूरा जीवन बदलना है क्या उसको प्रवेश मिलता है इस मार्ग में। जिसको दो घोड़े की सवारी करनी है तो एक भी घोड़े पर नहीं रहेगा, वो गिरेगा ही गिरेगा।
जीवन में सुख लगेगा तो बदलना है, दुख लग नहीं रहा तो
इसके लिए कोई उपाय नहीं है क्या। जिसको जीवन में वर्तमान जीवन में सुख लग रहा हो तो वो सुख के लिए क्यों मारा मारा फिरता है, ये हमारा सवाल है।
ज्यादा सुख है, कम सुख है, ज्यादा सुख के लिए फिरता है।
कम सुख है तो उसको छोड़े ही नहीं। जैसे आपको लड्डू खाने में सुख है, लड्डू खाते रहो, आपको कोई लड्डू की तो कमी नहीं है। एक दो खाते हैं लेकिन दस बीस खा लो तो कोई कमी तो है नहीं, फिर आप क्यों नहीं खाते हो? कि खाने में सुख था, अब नहीं खाने में सुख है क्या? पहले तो हमको खाने में सुख था, अब नहीं खाने में सुख है। आता हूं भतुजे के शोक श्लोक में, भोगे रोग हम क्या खाते खाते लग जाएगा, अगर बहुत खाएंगे ना तो तबियत बिगड़ जाएगी, खाने की मजा उड़ जाती है। खाना बहुत है लेकिन क्या विचार होगा कि ज्यादा खाने से तबियत खराब होती है, ये तो भाई खड़ा ही है, खाते खाते वो भाई तो खड़ा ही है तो सुख कैसे हुआ? जो खाते खाते रोग का भय हमें मालूम है तो ये खाने का सुख रहा क्या? क्यों रहा बताइए? भय का दुख चलता है उसमें तो। सभी अज्ञानी प्राणी सातों प्रकार के भय से हमेशा हमेशा ग्रसित है। कल क्या होगा, कैसे होगा, कुछ अकस्मात तो नहीं होगा, मृत्यु तो नहीं आ जाएगी, कोई रोग तो पैदा नहीं हो जाएगा, कहीं न कहीं प्रकार के जो भाई के प्रकार है वो तो सभी परिणति रूप में चालू हो जाता है। उपयोग भले इसका हो ना हो, परिणति रूप में तो वो चालू ही चालू रहता है। इसलिए कोई संसारी प्राणी संसार में सुखी है नहीं। और सबसे बड़ा जो है वो तो मृत्यु का भय है। जिस खुशी को वो तो सताता ही रहता है, मृत्यु का भय तो सताता ही रहता है। जैसे कोई कलेजा में अंदर को बिछा दिया हो और हमेशा काटता ही रहता हो कलेजा को, ऐसा ये भय है वो कलेजा में अंदर के तरफ बैठे बैठे काटता ही रहता है और उसकी लीलना में पीड़ा चालू ही रहती है कि अरे क्या होगा, कौन कौन मालूम, कल की क्या मालूम, कल का क्या भरोसा, कब क्या हो जाएगा, ये चालू ही रहता है।
सुख है क्या,
सुख अनुभव
है या सुख क्या है?
सुख शरीर है क्या?
सुख क्या चीज है?
सुख आत्मा में तो अनंत भरा है लेकिन वर्तमान में इसकी उपलब्धि नहीं है। आत्मा में अनंत लेकिन वो शक्ति रूप में है, व्यक्ति रूप में नहीं होने से उसका अनुभव नहीं हो रहा है। इतनी सी बात है लेकिन सुख तो है तो सही, प्रदेश प्रदेश में अनंत सुख भरा है, कोई प्रदेश खाली नहीं है। कि इस मार्ग का मैंने ज्ञानी पुरुष की पहचान करना यही मार्ग है, इसका विचार करना। क्या कारण से विचार करना, क्यों विचार करना? कि धर्मुख शिक्षा है इसलिए विचार करना, पूर्णता के लक्ष्य पूर्वक विचार करना। इसका धर्मुख शिक्षा तो होनी ही चाहिए, जिसको धर्मुख शिक्षा नहीं है इनको कभी ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि हमको थोड़ी तो इच्छा है तो मोक्ष की इच्छा है लेकिन थोड़ी है, ज्यादा तेज नहीं है। तो कहते हैं कि उसको मोक्ष की इच्छा नहीं है, उसको संसार की इच्छा है। क्या संसार की इच्छा माने? उसको परिभ्रमण की इच्छा है। घूमने की किसको कोई किसी को इच्छा होती है क्या? कि इच्छा नहीं होने के बावजूद भी अज्ञान के कारण से यही प्रवृत्ति करता है कि बहुत दुखी हो जाएगा, अनंत दुखी हो जाएगा। क्या उसके सुख का स्वरूप
और सतपुरुष की दो कार्य में इसका दूसरा प्रयोग होता
है। हाँ ये प्रश्न अच्छा है। सबसे पहले धर्मोक्ष इच्छा होना तो सतपुरुष की खोज चालू होगी कि मेरी इच्छा पूर्ति के लिए सतपुरुष के बिना कोई मुझे मोक्ष का मार्ग दिखा सकेगा? हाँ बीमार होने वाले को पहला विचार क्या आएगा? हमको संसारी विभ्रमण की बीमारी है या नहीं है, रोग चालू है या नहीं है? तो दो रोग तो चालू है, पहला विचार क्या आना चाहिए? कि इस रोग को मिटाने वाला कोई जानकार है तो नहीं है? हम तो जानते नहीं, हम तो रोग को ही नहीं जानते, रोग का इलाज तो कहां से जानेंगे? तो पहला विचार नहीं आएगा, किसी को भी नहीं पहला विचार आएगा, ग्वार को भी पहला विचार नहीं आएगा। पहला विचार नहीं आता क्या आता है, इसका मतलब क्या? कि हम छुपना नहीं चाहते हैं, जो प्राणी छुपना चाहते हैं उसको यही विचार आएगा। छुपना को या धर्मोक्ष इच्छा को पहला है उसको ये विचार, सबसे पहले ये विचार आएगा कि जब मुझे मुक्त होना नहीं है, मुझे जन्मवरण चाहिए नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए। अगर जन्मवरण में होता है तो एक गोली, तो डॉक्टर बोले कि एक ही गोली है, दूसरी नहीं है मेरे पास, लेकिन जो खाएगा नहीं मरेगा नहीं, लेकिन इस योजना को मैं इसको दूंगा कि जो मुझे सबसे ज्यादा पुण्य देने वाला मिलेगा उसको दूंगा। तो अब इससे किसकी कितनी की ऑफर देंगे डॉक्टर के पास? फिर से ऐसी कोई गोली है कि जो जो खाने से वो उसको मरण नहीं होता है, वो तो गोली एक ही है और उसका इरादा है कि जो सबसे ज्यादा कीमत दे उसको देनी है। आपके पास वो बात आई, आप कितनी कीमत देंगे? कर्जा करके भी लेंगे ना, क्यों इससे भी सलाह मत तो पकड़िया कमा लेंगे, कमा करके कर्ज को वापिस कर देंगे। जिंदा रहेंगे तो कमा लेंगे और कर्ज किया वापिस कर देंगे, लेकिन मरना तो है नहीं।
कितनी प्रायोरिटी है?
उतनी प्रायोरिटी है और अनुभव के लिए प्रायोरिटी नहीं है तो क्या हमारी हालत है कि हमारे इंडियन हम छूटना चाहते नहीं है? प्रमुख शिक्षा करनी चाहिए इस विचार में अप्रमत रहना चाहिए। जहां तक दृढ़ मुख शिक्षा न हो वहां तक दृढ़ मुख शिक्षा बनाने के लिए प्रमाद करना हानि। तीव्रता आ जानी चाहिए कि हमें क्यों ये मोक्षाभिला से पढ़ा नहीं प्राप्त हो रहा है, क्या बात है, आना ही चाहिए। होकर अवश्य मार्ग की प्राप्ति होकर अंधत्व दूर होता है, मार्ग की प्राप्ति होने से अज्ञान अंधकार नहीं रहता है। अपने परिणाम में कौन विराधना के परिणाम में कौन आराधना के परिणाम में ये अच्छी तरह मालूम पड़ता है कि अंधत्व नहीं रहा। निशंक माने अनादिकाल से जीव उनके मार्ग पर चला है, देखो सब कुछ किया है, मुनिपणा लेकर भी उनके मार्ग पर चला है और शास्त्र अध्ययन अज्ञान नौकरों का करते हुए उनके मार्ग पर चला है, अनाधिकार से उनके मार्ग पर चला है। अगर ऐसा नहीं होता तो मोक्ष हो जाता कभी का, कभी वो होता नहीं, अनंत काल गया हो तो ऐसा करते करते काल से जिए उल्टे मार्ग पर चला है। यद्यपि उसमें जप तप शास्त्र अध्ययन आया नहीं आया, जप तप शास्त्र अध्ययन इत्यादि अनंत बार किया है, एक बार नहीं किया है किंतु अनंत बार किया है, तथापि जो कुछ करने योग्य जो कुछ ये अवश्य करने योग्य था क्या सत्पुरुष की समय प्रतीति और पहचान और उससे अत्यंत भक्ति असल प्रेम भक्ति करने योग्य था वो जीने किया नहीं है वो हमने पहले ही बताया है। क्या पहले बताया? सबसे पहले कि जो निरंतर भाव अपित बुद्धता से विचरते हैं ऐसे ज्ञानी पुरुष के चरणारविंद की प्राप्ति के प्रति असल प्रेम हुए बिना और सम्यक प्रतीति आए बिना, ये पहला लिखा है हमने। पर ऐसा नहीं किया है, बाकी सब कुछ किया है। ज्ञानी पुरुष को पहचान करने में ही जीव भूला है, शास्त्र पढ़ने में नहीं भूला है, बुद्धि तगड़ी है, सब शास्त्र पढ़ लाले
क्या पौध डाले डाले डाल दिया फोड़ फोड़ करके डाल दिया।
लेकिन कितने सत्पुरुष को ज्ञानी पुरुष को पहचाना दोनों चला जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये कहते हैं अनुभव वर्जित है। अनुभव वर्जित है क्या? अनुभव से लेकर के मोक्ष तक की सभी पर्यायें इसके गर्भ में पड़ी है, वो अपने अपने काल में जन्म लेगी। ऐसी बात है बारंते। कितना बार सरल है बताइए, फिर मार कितना सरल है बताइए, मार उतना सरल है। हमको शास्त्र मचने की सूझ आती है, हमको त्याग करने की सूझ आती है, करते नहीं करते संप्रदाय में सत्रह सौ पहचानने की सूझ क्यों नहीं आई बताइए, क्यों नहीं आई? इन कारण है परिभ्रमण का। क्या लिखा है देखो, तृतीय जप तप शास्त्रोध्ययन इत्यादि अनंत बार किया है, तथापि जो भी कुछ करने योग्य था वो उसने नहीं किया है। जो हमने सबसे प्रथम लिखा है, सबसे पहले लिखा है, वो नहीं किया है। एक ही जगह भूला है, बस अनंत बार एक ही जगह भूला है। सबसे मिला तो भी भूला है, पहचानने को वो भूला है, बाकी मार्ग सरल है। तो मार्ग की जो सरलता है वो यहाँ दिखा दी है, इस पर बारंबार विचार करने योग्य है। अब एक पत्र तो अधूरा छोड़ना पड़ेगा, बहुत सी बात है। आगे लेंगे 194।